Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Paramashaktaya Pratasmaraniyam Prempuriji Maharaj ke पावन चरणों में नमन करते हुए परम शुद्ध प्रत स्मरणीय महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए कठोपनिषद अध्याय पहला वल्ली दूसरी श्लोक आठवा न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनियान ह्यतर्क मनुप्रमाणात्। मानवीय मन और इंद्रियां संसार के विषय में सोचती हैं, बाहर के पदार्थों के बारे में कल्पनाएं करती, और वो कल्पना फिर उन्हें बाहर कर देती हैं। जैसे ही हम कल्पना करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, तो हम बाहर हो जाते हैं, हम अंदर नहीं रहते, हम बहिर्मुख हो जाते हैं। और जब हमारा मन विचारों और कल्पनाओं का परित्याग कर देता है, उस समय हम अपने में होते हैं। अभी परम पूज्य महाराज श्री को श्रवण कर रहे थे। शांत को पाना हो तो मन का शांत होना बहुत आवश्यक है, और अशांत को पाना हो तो मन तो अशांत हो ही जाता है। दुनिया के पदार्थों को हम प्राप्त करते हैं तो दुनिया के पदार्थ अशांत हैं, बहुत अशांत हैं। उसकी अशांति हमें मालूम नहीं पड़ती है, क्योंकि हम भी अशांत हैं। एक अशांत दूसरे को कैसे जानेगा? दूसरे की अशांति भी हम जान नहीं पाते, क्योंकि हम स्वयं अशांत हैं। और अशांत के पीछे हम रहेंगे तो हमारा मन और अशांति में चला जाएगा। और शांत वस्तु को पाना हो, परमात्मा को पाना हो, आत्मा को पाना हो, तो मन का शांत होना बहुत आवश्यक है। ये जितनी भी साधनाएं हैं, ये हमारे मन को शांत करने की साधना। अभी आप कह रहे थे बहुत अच्छी बात, यहां केवल अशांति को मिटाना है, शांति को पाना कोई अलग चीज नहीं है, अशांति को मिटाना ही शांति को पाना है। परम पूज्य महाराज श्री को त्यागमूर्ति गणेशानंद जी महाराज ने पूछा कि आपको ब्रह्मज्ञान हो गया, तो महाराज ने ये नहीं बोला कि मुझे ब्रह्मज्ञान हो गया है। महाराज ने कहा कि केवल अज्ञान आवरण हट गया। ज्ञान को पाना नहीं है, आत्मा को पाना नहीं, वो तो पहले से ही है। केवल अज्ञान जन्य जो भ्रम है, जो अज्ञान है, उसको हटाना है। और जैसे ही अज्ञान हटता है तो अज्ञान जन्य भ्रम हट जाता है, और उसके बाद जो आप हैं वो है। आप नहीं जानते रहे, उस समय भी आप थे, और रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं था, जैसे ज्ञान के बाद थे वैसे ही कोई अंतर नहीं था। और जो अंतर मालूम पड़ रहा था वो वृत्ति का अंतर था, वृत्ति के दृष्टा आत्मा का कोई अंतर नहीं था, वो शरीर का अंतर था। आप जवान हुए, बूढ़े हुए, आप सुखी हुए, दुखी हुए, ये अंतर तो वृत्ति का अंतर है। आपके मन में भाव उठा मैं सुखी, मन में भाव उठा मैं दुखी, ये वृत्ति है। आप अंतर तो सुख दुख का ही समझते हैं ना। आप समझ रहे थे मैं यहां हूं वहां नहीं, ये परिछिन्न का भाव था। और ये भाव क्या आत्मा का भाव था कि वृत्ति का भाव? ये वृत्ति का भाव था। जैसे सागर है और वो बहुत शांत है, बहुत शांत। आप जब भी किसी की शांति की उपमा देना चाहते हैं तो आप समुद्र की उपमा देते हैं। समुद्र इव गंभीरम, राम जी का वर्णन आता है, राम जी के स्वभाव का वर्णन आता है, समुद्र की तरह गंभीर। लेकिन आप कभी समुद्र के किनारे जाके बैठ जाइए तो आपको समुद्र शांत मालूम पड़ता है कि बहुत अशांत मालूम पड़ता है? आप ईमानदारी से, बेईमानी से उत्तर मत दीजिएगा। आप जाना समुद्र के किनारे, आप डर जाएंगे, बड़ी बड़ी लाटे और भयंकर आवाज, आपको ऐसा लगेगा कि मानो ये आपको ले जाने के लिए आया है। आप किनारे खड़े हो ना, आप डर जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मानो ये आपको ले जाने के लिए आ रहा है। सोमनाथ में जब गया रात्रि के समय मैं उठा और हमने सोचा कि चलो किनारे चलते हैं, इतना भयंकर आवाज और उसका जो स्वरूप प्रलयंकारी स्वरूप, प्रलय जैसा, मुझे लगा कि वाह क्या स्वरूप है इनका। और शास्त्र हमेशा उपमा देता है समुद्र की तरह उपमा देता है, शांति की उपमा समुद्र की तरह देता है। तो ये विरोधाभास मालूम पड़ता है थोड़ा, उपमा समुद्र की और वो भी शांति के लिए, और आपका जो अनुभव है परम अशांत, उपमा कैसे दी फिर? तो क्या शास्त्रकारों ने समुद्र को देखा नहीं था? क्या उन्होंने सुनी सुनाई बात कह दी? नहीं। ये समुद्र का जो अशांत भाव, ये लहरों का भाव है, ये लहरें हैं, लेकिन अंदर समुद्र बहुत गहरा है, बहुत गहरा, बहुत शांत, मालूम ही नहीं पड़ता इसके अंदर क्या क्या है। और हमारा मालूम पड़ जाता है, बस अंतर इतना ही है। हमें कोई आदमी बहुत जल्दी जान लेगा हम क्या है, सामने वाले को बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है। क्यों? बहुत उथले हैं, अंदर जो भी होता है वो बाहर निकल आता है। अंदर राग है, राग निकल आता है, अंदर द्वेष है, निकल आता है, अंदर क्रोध है, कामना है, विकार है, बाहर निकल आता है, दिखाई देता है। उथला पानी हो आप देखना उसमें सब दिखाई देता है, मछलियां दिखाई देती हैं, कितनी बड़ी हैं, कैसा रंग है, सब कुछ मालूम पड़ता है। लेकिन गहरा हो पानी तो जानना मुश्किल है इसके अंदर क्या है। और सब समाहित है। भगवान राम के बारे में उपमा दी, गंभीर शब्द का प्रयोग किया है, समुद्र की तरह गंभीर। आप जान नहीं पाएंगे राम क्या है, बहुत गंभीर है। आप राम को जानना चाहें तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि वहां उथलापन नहीं है, जो भी मन में आया बोलना नहीं है, उद्वेग नहीं है। धैर्य नहीं है, और राम में धैर्य, अगाध धैर्य है। ऐसा नहीं कि राम को क्रोध नहीं आता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं आता है, अकारण नहीं आता है, और जब आता है तो वो काम करके ही जाता है, वो काम करके ही जाता है। और हमारा जो क्रोध है वो काम करके नहीं जाता, वो बिना काम का ही होता है, वो निष्प्रयोजन होता है। इसलिए लहरें जो समुद्र की अशांति मालूम पड़ती हैं, वो समुद्र की नहीं, वो लहरों की हैं। हवा के झोंकों ने उन्हें थोड़े ऊपर से चंचल कर दिया। ऐसे हमारे जीवन में, हमारे मन में जो चंचल होने का, अशांति का अनुभव है, ये वृत्ति का अनुभव है। ये सारे हमारे अनुभव तन के हैं, आत्मा ज्ञान के पहले भी वैसा ही था और ज्ञान के बाद में भी। आपको ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, और उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि मैं वैसा ही था। ज्ञानी का यही अनुभव होता है कि ज्ञान के पहले भी मैं वैसा ही था जैसा मैं ज्ञान के बाद में हूं। इसलिए महाराज श्री ने उत्तर दिया, अज्ञान मिटा केवल, ज्ञान को पाया नहीं, आत्म तत्व को पाया नहीं, केवल अज्ञान के आवरण को हटा दिया। शांति को पाना नहीं, केवल अशांति को हटाना है। और अशांति को हटाने के लिए उपाय अशांति नहीं, आप अशांति को अशांति से हटाएंगे कि शांति से हटाएंगे? आप अशांति को अशांति से कैसे हटाएंगे? नहीं तो एक और अशांति पैदा कर लेंगे हम। आप अशांति को हटाने के लिए एक और अशांति पैदा कर रहे हैं, तो हम कभी अशांति को हटा नहीं पाएंगे। इसलिए अशांति को हटाने का उपाय शांति है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हिल रही है और उस हिलती हुई चीज को आपको स्थिर करना है, तो आपको भी हिलना होगा कि आपको स्थिर होना होगा? आप स्थिर होंगे तो हिलती हुई चीज को आप स्थिर कर सकते हैं। ऐसे ही है, पाना शांत को है, उसका उपाय भी शांत है। और ये बाहर के पदार्थ ये हमारे वृत्ति को अशांत बना देते हैं, हमारी वासना हमारे मन को अशांत बना देती है। और अशांत चित्त से आप कह भी ले कुछ, अस्थिर चित्त से हम कुछ कह भी ले, तो वो अशांत ही होगा कि शांत होगा? यह श्रुति बहुत सुंदर बात कह रही है। हम अशांत हृदय से कोई चीज बोल दे, उस बोलने में भी अशांति होगी। कभी आपने ध्यान दिया होगा, बहुत आदमी परेशान है, बहुत परेशान, और जब वो बोलता है ना तो उसके बोलने में परेशानी झलकती है, उसके बोलने में दुख झलकता है, क्योंकि अंदर दुख है, अंदर अशांति है, अंदर अग्नि जल रही है। और उस समय कह भी दे शांति की बात, तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि इसके बातों में बहुत अशांति है। आपको मालूम पड़ेगा इसके बातों से बहुत दुख, क्योंकि हमारा स्वभाव है, शब्द का स्वभाव है, जो हमारे अंतःकरण में होता है वो शब्द के द्वारा बाहर आता है। चाहे वो शब्द कैसे भी हो, कितने भी सुंदर शब्द हो, लेकिन हृदय में दुख है तो शब्दों में दुख आता है। दुख की कंपन, दुख का विक्षेप उनके शब्दों में हमें मालूम पड़ने लगता है। इसलिए श्रुति ने बहुत सुंदर बात कही, उस तत्व को बहुत ज्यादा सुनने से भी पाया नहीं जा सकता है, उसको पाना है, समझना है, तो श्रवण को हम मनन में ले जाएं, मनन को निधिध्यासन में ले जाएं, और उसके बाद फिर उस तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले श्लोक में बताया और इस श्लोक में कह रहे हैं उस तत्व को कहना किसको चाहिए, कहने का कौन अधिकारी है? न नरेन अवरेन प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमानः। उस तत्व का अनुभव जिसको हो, उसका स्पर्श जिसको हो, उसके द्वारा जब वो कहता है तो वो ज्ञान, वो शब्द हमारे अज्ञान को मिटाने में समर्थ होता है। क्योंकि अंदर शांत हैं और शब्द के द्वारा फिर वो शांति बाहर आएगी और फिर आपको शांत बना देगी, श्रोता को शांत बना देगी। इसलिए कहते न नरे न आवरे न आवर अपर क्लास, जिसको अनुभव नहीं है, जिसका अंतकरण स्थिर नहीं है, ऐसा नर जो वर नहीं, जो श्रेष्ठ नहीं है, उसके द्वारा प्रोक्त ऐसा कहने पर भी न स्वीकेय, वो समझ में नहीं आता है, वो हमारे अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि जिसने कहा है उसको उसका पता नहीं है। और उस समय जितना भी कहा जाता है वो कहना द्वैत को निर्मित करता है, वो कहना वो श्रवण हमारे जीवन में त्रिपुटी को निर्मित करता है, अनेकों कल्पनाओं को निर्मित करता है। संदेह का छेदन नहीं होता अपितु और संदेह निर्मित होते जाते हैं। हमारे जीवन में चार प्रकार के अनुभव हैं, प्रत्यक्ष की कोटियां चार प्रकार की, एक परोक्ष है, परोक्ष माने केवल शब्द जन्य ज्ञान है, आक्षना परम, आंख से परे हैं, इंद्रियों से परे, केवल सुना है, वो है भी कि नहीं मालूम नहीं है, कैसा है इसका भी पता नहीं है, केवल सुना है, ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और दूसरा ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान माने सुना नहीं, केवल सुना हुआ नहीं है, उसको हमने देखा है, हमारे अनुभूति का विषय है, हमारे प्रत्यक्ष का विषय है, उसको हमने चखा है, देखा है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और तीसरा ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है। अब आपको यहां पर अंतर समझना है, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष में अंतर है। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष में अंतर है, अपने से भिन्न बाहर के पदार्थों का इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान में ज्ञाता से भिन्न विषय होता है, यहां त्रिपुटी होती है, ये ज्ञाता है, बीच में ज्ञान है और उस ज्ञान का विषय पदार्थ है, ज्ञेय है, प्रमेय है। और तीसरा ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष में अंतर और अपरोक्ष में अंतर है, दोनों ज्ञानों में अंतर है। प्रत्यक्ष ज्ञान बाहर के पदार्थों का ज्ञान है और अपरोक्ष ज्ञान अपने अंदर के पदार्थों का ज्ञान है। जैसे आपको अपने सुख दुख का ज्ञान हुआ, आपको अपने विचारों का अनुभव हुआ, आप विचार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, विकारों का ज्ञान हुआ, कामनाओं का ज्ञान हुआ, अपने अंदर सुख दुख का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान अपरोक्ष है। तो प्रत्यक्ष का विषय सबका एक समान होता है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान का विषय केवल आपके लिए होता है, आपके सुख दुख को दूसरा नहीं जान सकता है, आपके अंदर क्या चल रहा है केवल आप जान सकते, दूसरा नहीं जान सकता। आपसे कितना भी निकट आदमी क्यों न हो, कितना भी निकट, कितना भी मित्र, कितना भी अपना आदमी क्यों न हो, लेकिन वो आदमी आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या जान रहे हैं, इसको आप वो जान नहीं सकता है। यह परोक्ष ज्ञान है। यहां भी त्रिपुटी है, यहां पर भी त्रिपुटी है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद है। हम जान रहे हैं अपने सुख दुखों को, जान रहे हैं सुख दुख ज्ञेय है, हम ज्ञाता है, और वहां जानने की प्रक्रिया है। इसलिए आदमी हंसता मुस्कुराता है, अपने भीतर के अनुभव को व्यक्त करता है और उसके बाद रोने लगता है। वहां विषय था, वो जान रहा था, त्रिपुटी थी, और सुख था तो उसको व्यक्त कर रहा था, और जैसे दुख हुआ दुख को व्यक्त कर रहा है। वहां त्रिपुटी है, वहां केवल स्वयं जान सकता है, सुख दुखों को केवल स्वयं जान सकता है। हंसने से तो केवल हम अनुमान कर सकते हैं, और आश्चर्य की बात कई बार आदमी ऊपर से हंसता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी होता है। इसलिए हंसना सुख की पहचान नहीं है। जब आप समाज के बीच में जाते हैं तो आप कितने भी दुखी हो तो आप हंसते हुए जाते हैं कि आप रोते हुए जाते हैं? आप समाज के बीच में जाते तो आप हंसते हुए जाते हैं, इसलिए आप कितने दुखी हैं समाज का आदमी जान नहीं पाता है। हंसना ये सुखी होने की पहचान नहीं है। कई बार हम हंसते तो हैं लेकिन बहुत दुखी रहते हैं। यह अपरोक्ष ज्ञान है, और साक्षात अपरोक्ष उसको कहते हैं जहां त्रिपुटी नहीं है। आप हैं, आपने कहा हां मैं हूं, केवल जो मैं का जो ज्ञान है ना, केवल मैं का ज्ञान, यही साक्षात अपरोक्षात ज्ञान है, यही साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है। आप श्रवण करते हो ना, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। आपको केवल अपना ज्ञान हो, अपना ज्ञान, मैं हूं, आपको बोध हुआ मैं हूं, इसमें कोई त्रिपुटी है? लेकिन आपने थोड़ा बदल दिया, अनुभव को बदल दिया, आपने कहा कि मैं अच्छा हूं, मैं मोटा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, आपका ज्ञान बदल गया। अब ये साक्षात अपरोक्ष नहीं रहा, अब ये ज्ञान अपरोक्ष हो गया। आपको इतना भी ज्ञान हुआ कि मैं सुखी हूं, यदि केवल मैं का बोध है, साक्षात अपरोक्ष जहां कोई त्रिपुटी नहीं है, आप ही विषय हैं, आप ही अपने को जान रहे हैं, वहां क्या त्रिपुटी है? स्वाभिन्न जो आत्म तत्व का प्रत्यक्ष है उसको कहते हैं साक्षात अपरोक्ष ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आत्म ज्ञान है। हम अपने आप को अनात्म पदार्थ निरपेक्ष जान लेते हैं, शरीर निरपेक्ष अहम तत्व का जो बोध, यही आत्म ज्ञान है। आपने जान लिया मैं, और आश्चर्य के बाद इसके साथ जब कुछ चीजें जुड़ जाते हैं ना तो ये अनात्मा का ज्ञान हो जाता है, और सब कुछ छोड़कर केवल विशुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व का बोध है, वही आत्मबोध है, ये साक्षात अपरोक्षात बोध है। और इस बोध में आप जब प्रवेश करते हैं तो यहां पर अद्वैत है, यह अद्वैत नहीं त्रिपुटी, ये द्वैत है। हम जहां पर भी त्रिपुटी खड़ी करते हैं वहां द्वैत होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, और जहां अपना ज्ञान हुआ वहां अद्वैत का ज्ञान है, यहां कहते हैं गतिरत्र नास्ति, आपने जाना उस आत्म तत्व को, और कैसे जाना, यथार्थ रूप से जाना, व्यापक रूप से जाना। अब वहां पर कोई परिच्छिन्नता नहीं है, शरीर की परिच्छिन्नता नहीं है, इंद्रियों की परिच्छिन्नता नहीं है, विषयों की परिच्छिन्नता नहीं, निरुपाधिक आत्म तत्व का बोध हुआ और निरुपाधिक आत्म तत्व का बोध परमात्मा के साथ एक होकर हुआ। भगवान शंकराचार्य जी ने उसको एकात्म विज्ञान बोला, एकात्म विज्ञान। ब्रह्म के साथ एक रूप होकर आत्म विज्ञान हुआ, अब वहां कोई त्रिपुटी नहीं। और उस समय जो ज्ञान होता है नारायण, यही ज्ञान होता है, मैं आपको मैं का बोध व्यापक रूप में होता है। उस समय द्वैत नहीं रहता, फिर उस समय हम दूसरे को नहीं देख पाते, उस समय केवल हम अपने को देखते हैं, और बाहर भी और भीतर भी। हम बाहर भी अपने को देखते हैं और भीतर भी अपने को देखते हैं। वास्तविकता तो ये है, जब आत्मा का एकत्व विज्ञान हो जाता है, सारे भेद समाप्त हो जाते हैं, और उस समय हम अनुभव करते हैं बाहर भी मैं, भीतर भी मैं, ऊपर भी मैं, नीचे भी मैं, यहां भी मैं, वहां भी मैं, मेरे अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। आत्मवेदम सर्वम, आपको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, यह अपरोक्ष ज्ञान, साक्षात अपरोक्ष कर। अब आपको अपने से भिन्न पदार्थ का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान हो रहा है, अपना ज्ञान हो गया। वहां कोई भेद नहीं है, वहां कोई द्वैत नहीं है। आप कल्पना करो, जब ऐसा ज्ञान ज्ञानी को होता है, जब ज्ञानी ऐसा अनुभव करता है मैं ही हूं, वो कैसा रहता होगा। इसलिए ज्ञानी जब बोलता है ना, तो उसके ज्ञान में भी वही होता है। आप ध्यान दें, आज श्रुति क्या कहना चाहती है, वो जब बोलता है तो बोलने में भी कौन होता है, वही होता है, क्योंकि अनुभव कर रहा है कि बोलने वाला भी वही, बोलना भी वही, और जिसके साथ बोल रहा है वो भी वही।